नमस्कार, बोधि वार्ता में आप सभी का स्वागत है। अब अज्ञान क्या है, कहे सुने हमारे माता पिता या समाज या समाचार पत्र या टीवी से जो मिला है वो हम उसको ज्ञान मान लेते हैं, लेकिन वो अज्ञान है, वो मान्यताएं हैं। अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव। और आप बता सकते हैं, आप ज्ञान का अभाव का क्या मतलब है? अनुभव का अभाव। अगर आपको अनुभव नहीं हुआ है तो ज्ञान भी नहीं होगा। हाँ, तो अज्ञान की परिभाषा ये है कि वो ज्ञान का अभाव है, या जब ज्ञान की जगह मान्यताएं ले लेती है, मान लिया जाता है बस कि ये ज्ञान है, बस इसने बोल दिया है तो अब ये ज्ञान हो गया। अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पहले से ही मालूम है। ये इसको हम मान्यता कहते हैं, इसको हम अवधारणा कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है उनके मन में, उनके चित्त में सिर्फ मान्यताएं भरी हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का जो भाग है वो बहुत छोटा है, मतलब 10% मान लीजिए ज्ञान है जो अनुभव के आधार पर है, 90% अज्ञान है, मान्यताएं हैं। इसीलिए ज्ञान मार्ग पर हमारा काम जो होता है वो मान्यताओं खत्म करने का होता है। मान्यताएं जो भर दी गई हैं हमारे चित्त में, संस्कार हमें बना दिए गए हैं उल्टे सीधे, उनको नष्ट करना वो एक बड़ा काम होता है ज्ञान मार्ग पर, या किसी भी अध्यात्म मार्ग पर, या विज्ञान के मार्ग पर। तो ये ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान का अभाव। यदि हमें हमारे मन में मान्यताएं भी नहीं होंगी, अवधारणाएं तरह तरह की भी नहीं होंगी, या गलत ज्ञान जो है वो भी नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम अबोध व्यक्ति कहते हैं। अबोधता, जैसे एक छोटे बच्चे में ना उसको ज्ञान है लेकिन अज्ञान भी नहीं है, अबोध है, निर्दोष है। तो अबोधता से आपको दुख नहीं मिलेगा। अबोध व्यक्ति के सामने ज्ञान अर्जन करने का मार्ग खुला रहता है, लेकिन अज्ञानी के सामने है वो मार्ग नहीं होता। वो क्योंकि पहले से ही जानता है, मैं तो जानता हूँ हर चीज, तो उसको कोई रुचि नहीं होती ज्ञान प्राप्त करने की। उसका जीवन जो है वो गलत मार्ग पर अपने आप चला जाता है, दुखों का कारण हो जाता है अपने आप। ये अज्ञान है, ये अज्ञान की परिभाषा है। अगर आपको ज्ञान की परिभाषा आ गई है तो अज्ञान की परिभाषा बहुत आसान है। ज्ञान का अभाव, इसका मतलब अनुभव का अभाव। जिसमें ज्ञान का अभाव है उसकी चित्तवृत्ति कैसे होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं अब आसानी से कि जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ उस चित्त में कैसी वृत्तियाँ आती होंगी। वहाँ तो कुछ भी सही आपको दिखेगा नहीं। उस आदमी के अगर आप मन को पढ़ सकें तो आपको वहाँ सारा कचरा ही मिलेगा, कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा होगा उस आदमी के मन में, और उसकी वाणी भी वैसे ही होगी, उसमें कोई अर्थ नहीं होगा। कर्म होंगे वो भी वैसे ही होंगे, उसके जो विचार होंगे वो एक के बाद एक आवेग होंगे, और कर्म भी आवेग से भरे होंगे। कुछ भी बुद्धिमानी आपको दिखाई नहीं देगी। अज्ञान के अंधेरे से निकले हुए कर्म दुख का कारण है। ये जरूरी नहीं कि हर कोई ज्ञानी हो, हर कोई बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन इतना ज्ञान हो जाना चाहिए लोगों को कि उनके जीवन में दुख नहीं हो और वो किसी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाए, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाए, इतना कम से कम होना चाहिए। भले ही आप बहुत बड़े ज्ञानी ना बन पाए लेकिन इतना ज्ञान होना चाहिए। और आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है, उनका खुद का जीवन दुख से भरा है। किसी को भी ले लीजिए आप, लोगों को लगता है कि पैसा हो और संबंधी हो और अच्छा शरीर हो, एकदम चुस्त दुरुस्त हो, और क्या चाहिए। लेकिन ये चीजें होने के बाद भी दुख ही दुख है। तो उसका कारण है चित्त की वृत्ति, जो कि दुख का कारण है। दुख पैदा कर रही है वो वृत्ति, और वो वृत्ति इसीलिए वैसी है क्योंकि वहां अज्ञान है, मान्यताएं हैं, संस्कार जो है वैसे भरे हैं उस चित्त में, इसीलिए वैसे कर्म है, वैसी वाणी है उनकी। दुख और बंधन का कारण जो है, मुक्त नहीं है लोग, सुखी नहीं है, उसका कारण है अज्ञान। तो आप जान सकते हैं ज्ञान के क्यों पीछे पड़े हैं हम, ज्ञान के क्यों इतना वक्त देते हैं, क्यों इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों को समझाने की, या ये जो ज्ञान फैलाने की, क्योंकि हमें इसमें कुछ मूल्य दिखाई देता है। छोटी बात नहीं है ज्ञान, ये आधार है, ये मनुष्य जीवन का आधार है ज्ञान। तो थोड़ा हम अभी तकनीकी हो जाते हैं, थोड़ा और विस्तार में आपको और गहरे ले जाता हूँ। ये मौलिक बातें थी, ये इतना आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे जो आने वाला है वो ज्ञान मार्ग या अद्वैत मार्ग या सांख्य या मीमांसा के शिष्य के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि ज्ञान और चित्त की वृत्ति का सीधा संबंध है। आप जान ही लिया होगा कि ज्ञान होगा तो कैसी वृत्ति होगी और नहीं होगा तो कैसी वृत्ति होगी। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। खुद सबसे बड़ा उदाहरण आपका खुद का चित्त होगा। देखिए आप कैसा होता है, उसमें कैसी वृत्तियाँ पैदा होती हैं। ज्ञान से जो पैदा होती हैं वो कैसी होती हैं और अज्ञान से भरी जो वो कैसी होंगी। तो इस पे काफ़ी शास्त्रों में लिखा गया है, किताबों में लिखा गया है, तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसका सार बता देता हूँ जो कि अनुभव आधारित है। आप प्रयोग करके उसको पूरी तरह से जांच पड़ताल कर सकते हैं, आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट पहले मैं कह रहा था कि आपका अनुभव या आपका ज्ञान है, और मैं अभी कहूँ कि हाँ अभी जो नई बात जो मैं बता रहा हूँ वो किताब से बता रहा हूँ, तो फिर उसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब मैं खुद को ही गलत सिद्ध कर रहा हूँ। आपको जो भी मैं कहने जा रहा हूँ या जो भी कहता हूँ ज्ञान के विषय में, आपको अपने अनुभव से उसको तोलना है, सही है या गलत है आपको आपके अनुभव से ही पता चलेगा। तो हमारे जो गुरुओं ने अपने अनुभव से जो लिखा है उसमें से कुछ बातें मुझे पसंद आई हैं जो मैं आपको बताता हूँ विस्तार से, और जो मेरे अनुभव के हिसाब से सही है। हो सकता है आपका अनुभव कुछ और हो तो आप कुछ और उसमें जोड़ना चाहें या मुझे बताना चाहें कि नहीं ये सही नहीं है, तो बोल सकते हैं कभी भी। चित्त की जो वृत्तियां हैं और ज्ञान का क्या संबंध है, जो मुझे सबसे पसंद आया वो है पतंजलि का दिया हुआ। पतंजलि जो योग शास्त्र है जिन्होंने लिखा, उन्होंने 5 प्रवृत्तियां बताई हैं चित्त की, और मेरे हिसाब से 5 नहीं है, हजारों हैं, 5000 होनी चाहिए, लेकिन आप उनको 5 भागों में बांट सकते हैं। हम 10 में बांटना चाहें 10 में बांट सकते हैं, लेकिन पतंजलि ने उनको 5 में बांटा है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा जानना चित्त की वृत्तियों का। तो उन्होंने 5 वृत्तियाँ बताई हैं। पहली बताई है प्रमाण, दूसरी है विपर्य, तीसरी विकल्प, चौथी निद्रा और 5वीं स्मृति। अब इनका क्या मतलब है? प्रमाण वो वृत्ति है जहाँ हमें सही ज्ञान होता है, जहाँ हमें प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान होता है, वो वृत्ति है प्रमाण। जैसे मैं अभी देखता हूँ खिड़की के बाहर तो मुझे रात दिखाई देती, तो ये रात का समय है, ये प्रामाणिक ज्ञान है, इसके सामने मेरे सामने प्रमाण दिखाई दे रहा है, तो ये वृत्ति जो है हुई, ये ज्ञान जो बना वो सही ज्ञान है। दूसरी जो वृत्ति है विपर्य, इसका अर्थ है उल्टा ज्ञान या गलत ज्ञान। एक और उदाहरण है कि आप रेगिस्तान में आप देखें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पानी है दूर, लेकिन वो बस गर्म हवा होती है, तो आपका अनुभव तो आपको बता रहा है कि यहाँ पानी है, लेकिन आपको ज्ञान क्या हो रहा है, गलत ज्ञान हो रहा है, वहाँ पानी नहीं है। अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो वो भी पीछे पीछे जाता जाएगा, और एक समय आएगा कि आप वहीं पर गिर पड़ेंगे। अनुभव है लेकिन उसका अगर अर्थ गलत निकल जाए आपके पिछले संस्कारों के वजह से, तो वो गलत ज्ञान हो जाता है, वो अज्ञान हो जाता है। तीसरा है विकल्प या काल्पनिक ज्ञान। ये सबसे बड़ा कारण है अज्ञान का, कल्पना करना किसी चीज़ की और उसको ज्ञान मान लेना। लोगों ने जो तरह तरह की धारणाएं बना के रखी हैं वही सिखाई जाती हैं, और आपके मन में क्या होता है, कल्पना भर होती है उसकी, उसको आप ज्ञान मान लेते हैं। इसको पतंजलि ने विकल्प कहा है, ऐसी वृत्ति को विकल्प कहा है। उदाहरण के लिए अंधश्रद्धा जिसको कहते हैं, बहुत लोगों का ऐसी मान्यता है कि वो मंदिर में जाके नारियल फोड़ेंगे या पूजा करेंगे तो उनको कुछ मिलेगा, हो सकता है पैसे मिले, हो सकता है कुछ सफलता मिले। ये एक तरह का विकल्प है, क्योंकि अगर ये आपका अनुभव है तो ठीक है, अगर अनुभव में नहीं है तो सिर्फ ये कल्पना है। कुछ लोगों की काफ़ी सारी कल्पनाएं रहती हैं। एक शर्ट है मान लीजिए, आप वो पहन के कहीं जाते हैं, कुछ उस दिन बुरा हो जाता है, अगले दिन आप उस शर्ट को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मन में ये संस्कार बैठ गया है कि मैं जब गया था ये शर्ट पहनी थी, आज मैं पहनूंगा, दोबारा कुछ बुरा हो सकता है। तो ये विकल्प है, और आप देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा है हमारे आसपास, ज़्यादातर जो अज्ञान है वो विकल्प के रूप में है। बहुत से हैं, जैसे मैं ये फ़ोन खरीदूंगा, सब लोगों में मेरी शान बढ़ेगी, सब मुझे आदर की नज़रों से देखेंगे, आदर की दृष्टि से देखेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास इस शहर का सबसे महंगा फ़ोन है, या सबसे महंगी माला, हीरो की अंगूठियां या सोने के गहने मैंने पहने हैं, तो इससे मेरा मान बढ़ेगा। ये एक तरह का विकल्प है, वो जो आपको मान सम्मान देते हैं वो या तो दिखावटी होता है, मन में तो जलन होती है या कुछ और ही भाव होते हैं, या फिर वो डर के मारे वो उस तरह का व्यवहार करते हैं, लोग आपको सम्मान देते हैं। तो एक बार इस तरह का विकल्प मन में बैठ जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। चौथी वृत्ति जो बताई है चित्त की, वो है निद्रा, सुषुप्ति, जो गहरी नींद है। उसमें क्योंकि कोई अनुभव नहीं है तो कोई ज्ञान भी नहीं होता और कोई अज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर की जो मैंने बताई वृत्तियाँ वो भी नहीं होती, प्रमाण, विपर्य और विकल्प, ये तीनों नहीं होते निद्रा में। तो इसका ज्ञान से यही संबंध है कि दोनों, ज्ञान और अज्ञान दोनों से मुक्ति उस अवस्था में मिलती है चित्त को। स्मृति ये पांचवी वृत्ति है। तो स्मृति में बहुत सी चीज़ें आ जाती है, आपके जो दिन में जो सपने देखते हैं वो भी है, रात में जो सपने देखते हैं वो भी स्मृति है, और कुछ याद करते हैं वो भी स्मृति है, और कुछ पढ़ते हैं वो भी स्मृति है। ये एक तरह का संचित ज्ञान है, ये जमा हुआ ज्ञान है। इसमें दोनों तीनों तरीके के हो सकते हैं, किसी भी तरीके के ज्ञान आपको आपकी स्मृति में हो सकता है, सही ज्ञान भी हो सकता है, और स्मृति के बिना ज्ञान होगा भी नहीं। तो सही ज्ञान, गलत ज्ञान, अज्ञान, अबोधता, ये सारी चीज़ें जो है स्मृति से निकलती हैं। तो ये पांच वृत्तियां हैं और उनका ये ज्ञान से संबंध है। उसमें से सिर्फ एक वृत्ति जो कि प्रमाण है सही ज्ञान से जुड़ी है, जिससे कि आपको ज्ञान मिलता है, बाकी सारी वृत्तियां हैं सिर्फ अज्ञान है। चित्त पर भी है, मतलब कि उसकी ज्यादातर वृत्तियां अज्ञान से ही संबंधित है, ज्ञान से नहीं। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि चित्त की क्या अवस्था हो कि ज्ञान मिले। तो सिर्फ एक वृत्ति है जिससे कि आपको ज्ञान मिलेगा, उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण को ज्ञान अर्जन करने का सही तरीका बताया गया है, क्योंकि प्रमाण अनुभव से संबंधित है। अगर आपको सीधा अनुभव मिल रहा है, अपरोक्ष अनुभव आपको हो रहा है, तो वो प्रमाण है। और आपका जो चित्त है वो विपर्य में नहीं जा रहा है, उसे गलत अर्थ नहीं निकाल रहा है, तो आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो अज्ञान। जो है विभिन्न दर्शनों में विभिन्न भेद बताए गए हैं, उनके अलग अलग तरीके के प्रमाण बताए गए हैं। पहला तो आपने देखा क्या है, वो है प्रत्यक्ष या अपरोक्ष। जब आपका अनुभव प्रत्यक्ष है, किसी भी तरह का अनुभव हो सकता है, वो तीन में से, तीन मूल जो अनुभव है उनमें से किसी भी तरह का अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि वो अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष सीधा है, तो उसको प्रमाण कहेंगे। दूसरा तरीका है, उसको अनुमान कहा गया। अनुमान यानी कि तार्किक, जो तर्क पर आधारित हो। कहीं आपको धुआं दिखाई देता है तो आप कहेंगे हाँ वहां आग भी होनी चाहिए। तो आग का आपको ज्ञान कैसे हुआ? धुएं से हुआ, क्योंकि आपके चित्त में पहले से एक संबंध बना हुआ है। जहां भी आपने धुआं देखा वहां आपको आग दिखी, तो आपका वो संबंध, पुराना ज्ञान जो है वो आपकी स्मृति में आएगा और आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि वहां आग भी है। ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि आपको काले बादल दिखाई दे रहे हैं आसमान में, तो आप कह सकते हैं कि हाँ कहीं बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है। तो आपको ये ज्ञान कैसे हुआ? आपका पुराना प्रत्यक्ष अनुभव चित्रवृत्ति से, स्मृति के माध्यम से आपको वो ज्ञान करवाता है। समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रमाण का ही प्रकार है, अनुमान लगाना, लेकिन ये तर्क पर आधारित होना चाहिए। अगर ये तर्कहीन है तो आप गलत अनुमान लगा बैठेंगे और वो विपर्य विकल्प बन जाएगा। तीसरा जो उन्होंने बताया वो है उपमान, यानी कि किसी चीज की किसी दूसरी चीज से उपमा देना। यदि आपका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है तो आप उस चीज का ज्ञान उपमा से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करना ही पड़ता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपने कभी गाय नहीं देखी है, हिरण देखा है, तो मैं आपको बताऊंगा ये हिरण की तरह होता है, ये एक जानवर है, चार पैर है, एक पूंछ है, दो सींग है, और इस तरह के घास खाता है और इस तरह की आवाज करता है, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि गाय क्या है, लेकिन आपको तब तक वो पक्का नहीं होगा जब तक कि आप खुद नहीं देख ले, प्रत्यक्ष नहीं देख ले, लेकिन उपमा से आपको थोड़ा सा उसका ज्ञान हो सकता है, थोड़ा सा अवधारणा कम से कम बना सकते हैं उसकी कि वो कैसा होगा। जैसे आपने कभी हीरा नहीं देखा है तो मैं आपको कांच दिखा सकता हूँ जो गोल काटा गया है और चमक रहा है, तो आप पूछेंगे हीरा क्या होता है, तो मैं आपको वो कांच दिखा सकता हूँ कि ऐसा होता है, तो मैं उपमा दे रहा हूँ आपको हीरे की, तो आपको काफी ज्ञान हो जाता है कि जब आप हीरा देखेंगे आगे जाके तो आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ मैं इस बारे में बोल रहा था, हीरे के बारे में, और हाँ ये हीरा है, तो आप उसका संबंध उस शब्द से बना सकते हैं। ज्यादातर ज्ञान जो स्कूलों में दिया जाता है वो उपमा के आधार पर ही दिया जाता है। शब्द या आगम ये भी एक तरह का प्रमाण बताया गया है, किताबों में लिखा हुआ या बोला हुआ किसी का, इसको भी लोगों ने प्रमाण माना है। तो इसमें अलग अलग मत है लोगों के, ज्ञान मार्ग पर इसको प्रमाण नहीं माना जाता, लेकिन किसी किसी दर्शन में आपको मिलेगा कि जो शब्द है, श्रुति है, वेद है, वो इसको प्रमाण मान लिया जाता है कभी कभी। अगला जो प्रमाण लोगों ने बताया है गुरुजनों ने, वो है अर्थापत्ति। ये बड़ा नया शब्द है, आप लोगों को कभी सुना नहीं होगा शायद, लेकिन मैंने भी पहली बार ही सुना था जब मैं हिंदी उसका ट्रांसलेशन ढूंढ रहा था। तो अर्थापत्ति का अर्थ है कि ऐसा प्रमाण जिसमें एक बात अगर आप कहे तो दूसरी बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे मैं अभी कहूँ रात है तो अभी दिन नहीं है, ये बात सिद्ध हो गई, क्योंकि या तो रात हो सकती है या तो दिन हो सकता है। यदि आप सिर्फ कार्यालय या घर में पाए जाते हैं और आप घर में नहीं हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है कि आप कार्यालय में होंगे। अगला है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि मतलब यदि वो कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, जो अनुभव नहीं हुआ हो रहा है आपको, वो भी एक तरह का ज्ञान है। आखिर में उन्होंने अभाव बताया है एक तरह का प्रमाण। अभाव का अर्थ है कि वो चीज जो है कभी उपलब्ध नहीं होगी। अनुपलब्धि में अगर वो चीज उपलब्ध हो जाती है तो हो सकती है, तो उसका अनुभव हो सकता है, लेकिन अभाव में वो चीज कभी उपलब्ध नहीं होती। शास्त्रों में अच्छा उदाहरण मिलता है खरगोश के सींग। खरगोश के सींग नहीं होते, आपको कभी उसका अनुभव नहीं होगा, तो ये एक तरह का प्रमाण बन जाता है। या आप पूछेंगे कि मिठास का क्या रंग होता है, या जो खारा स्वाद है उसका क्या रंग होता है। अभी इन स्वाद का कोई रंग नहीं हो सकता, वो हमेशा अभाव रहेगा, उस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं आएगा। तो एक तरह का ज्ञान माना जाता है इसको, इसको एक तरह का प्रमाण माना जाता है। या सूर्य की छाया, जो सारी छायाएं हैं वो सूर्य से, सूर्य की रोशनी पे बनती है, सूर्य की छाया हो सकती है क्या? नहीं, सूर्य में छाया का अभाव है, तो एक तरह का प्रमाण है। तो ये छह प्रकार बताए गए हैं प्रमाण के। ये मूल है, ये जरूरी बात है, ये इसको गांठ बांध लीजिए, इसको मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। ये जो छह भेद हैं वो आपको हमेशा काम आएंगे। यदि आपके सामने कोई ज्ञान आता है जो इन छह प्रकार के प्रमाण में के अंतर्गत नहीं है, तो वह अज्ञान है, ये आप मान के चलिए ऐसा ही है। अब आप कहेंगे नहीं, मुझे तो जो शाब्दिक ज्ञान है उसमें वो लगता नहीं कि वो ज्ञान होगा, क्योंकि आपने बताया कि अनुभव से होना चाहिए। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ज्ञान इतना ज़्यादा है कि यदि आप सबका अनुभव करने जाएं तो आपके पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं होगा। तो सिर्फ व्यवहारिकता के लिए उसको डाल दिया गया है प्रमाण में। जैसे आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, आपको औषधि का ज्ञान चाहिए, तो औषधियाँ कितनी हैं? हजारों तरह की औषधियाँ हैं। खुद ढूंढने जाएंगे हर औषधि को और उसका नाम और ये क्या करती है, वो किस बीमारी के लिए कौन सी होती है, आपका पूरा जीवन चला जाएगा, आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा। लेकिन आप कॉलेज में जाएंगे, डिग्री लेंगे बी फार्मेसी में, तो आपको किताबों से ही सारा ज्ञान हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो व्यवहारिकता में के हिसाब से देखा जाए तो शब्द ज्ञान काम की चीज़ है, इसलिए कुछ गुरुजनों ने उसको डाल दिया है प्रमाण में। ये उस पर निर्भर करता है कि आपको भरोसा कितना है उस पुस्तक पर, उस किताब पर जहाँ से वो ज्ञान आ रहा है। अगर आपको उसको उस पर पूरा भरोसा है, आपकी श्रद्धा है, तो वो आपके लिए प्रमाण है, नहीं तो नहीं। और आपको उसको उसकी परीक्षा करनी पड़ती है कि हाँ, इस किताब में जो लिखा है वो सही है भी या नहीं, और वो परीक्षा अनुभव के आधार पर ही होती है, उसका कोई और, उसकी परीक्षा करने का कोई और आधार नहीं है। कुछ लोगों ने अनुपलब्धि और अभाव एक ही माना है। अभी ये दार्शनिकों का मतलब ये टाइम पास है, वो ऐसे करते रहते हैं वाद विवाद। तो मैं आपको सीधा सरल तरीका बता देता हूँ जो इन छह भेदों से भी सरल है। वो है मेरे हिसाब से कि ज्ञान के जो साधन है या ज्ञान का जो प्रमाण है वो चार तरीकों से ही आ सकता है। चार स्रोत हैं ज्ञान के। पहला जो आपको पता ही है, अपरोक्ष अनुभव, जो सीधा अनुभव जो आपका है वो ज्ञान है। दूसरा है तर्क, तीसरा है गुरु, और चौथा है पुस्तक। मेरे हिसाब से ये चार साधन हैं जो कि आपको ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन जो तत्व है इस प्रमाण का, वो हमेशा अनुभव ही रहेगा। तो फिर मैंने चार क्यों कहा है? यदि आपको ये छह जो है वो थोड़े कठिन लग रहे हो या लग रहा हो कि नहीं ये ठीक नहीं है, उपमान से कैसे ज्ञान हो सकता है किसी को, तो बात सही है। ये सब दर्शन शास्त्र की बातें हैं, किताबों में लिखी हुई। मेरा अनुभव ये बताता है कि ये चार साधन काफ़ी है ज्ञान के लिए। पहला अनुभव, दूसरा तर्क, तीसरा गुरु ये शिक्षक, चौथा पुस्तक। लेकिन पहला है अप्रोक्ष अनुभव, यही मूल है। तर्क, गुरु और पुस्तक ये अतिरिक्त साधन है। अब आप तर्क को ले लीजिए, आग और धुएं का उदाहरण ले लीजिए। मैं कहता हूँ कि धुआं है, कहते हैं कि हाँ धुआं है तो आग भी है, लेकिन वो आपको कैसे पता चला कि आग है वहाँ पे? क्योंकि आपका पुराना अनुभव, पिछला अनुभव आपको ये बताएगा। तो तर्क भी अनुभव पर ही आधारित होता है। बिना अनुभव के तर्क विपर्य में बदल जाता है। जैसे कि मेरे घर में जो खरगोश है उसके सींग सफेद रंग के हैं, क्योंकि सारे खरगोशों के सींग जो है सफेद रंग के होते हैं। तो आपके अनुभव में ऐसा कोई खरगोश है क्या जिसका कोई सींग भी हो? नहीं, कभी नहीं हुआ आपको। तो ये तार्किक है, तर्क संगत है कहना कि हाँ, क्योंकि सभी खरगोशों के सींग सफेद होते हैं, तो मेरे घर में जो खरगोश है उसका भी सींग सफेद होगा। ये तार्किक है लेकिन सच नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। तो तर्क भी आपका अनुभव पर ही आधारित होता है। अगर अनुभव पर आधारित नहीं है तर्क, तो वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो ज्ञान का साधन नहीं हो सकता। उससे आपको अज्ञान ही मिलेगा, ज्ञान नहीं। जो तीसरा है माध्यम, वो है गुरु का। गुरु दो तरह के होते हैं, एक तो जो है अनुभव से पढ़ा रहे होते हैं, अनुभव से सीख दे रहे होते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि कहीं सुनी बातें बता रहे होते हैं, या अपनी काल्पनिक बातें जो है सैद्धांतिक चीज़ें वो बता रहे होते हैं। वो सही क्या है, गलत क्या है, वो तो वो गुरु ही जानता है। लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो खुद के अनुभव पर ही आधारित होना चाहिए, तभी वो ज्ञान होगा। तो यहाँ यदि आपको गुरु के माध्यम से कुछ मिल रहा है ज्ञान, तो वो गुरु के अनुभव से ही आया हुआ है। यदि नहीं आया है तो आपको अज्ञान मिलेगा, ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर फिर से आप देखेंगे कि अनुभव ही मूल है, अनुभव ही आधार है। यहाँ पर वो आपका अनुभव नहीं है, आपके गुरु का अनुभव है, जो कि गुरु आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु के माध्यम से भी जो ज्ञान आता है वो भी अनुभव से ही आता है, गुरु सिर्फ माध्यम है। और चौथा जो है पुस्तक, पुस्तक जो है किसी ने लिखी होती है, और यदि वो अनुभव के आधार पर लिखा गया है तो पुस्तक ज्ञान का माध्यम है। लेकिन यदि उसमें अनुभव के आधार पर नहीं है, यदि वो विकल्प है या विपर्य है या फिर उसमें कुछ भी भर दिया गया है, तो वो अज्ञान का माध्यम है, वो ज्ञान का नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो नंबर दो, तीन और चार है, उससे आपको ज्ञान भी मिल सकता है और अज्ञान भी, दोनों। आपकी श्रद्धा कितनी है उस पर निर्भर करता है। यदि आप उसको ज्ञान का साधन मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं, अगर आपको उस पर शक है तो फिर वो ज्ञान का साधन नहीं हो सकता। इसीलिए जो ज्ञान का जो तत्व है, जिस ज्ञान का जो सार है, वो सिर्फ अपरोक्ष अनुभव ही है। हम जिस दर्शन के बारे में ज़्यादातर से बात करेंगे वो है वेदांत, वो है अद्वैत। और अद्वैत में सिर्फ दो ज्ञान के साधन बताए गए हैं, वो है अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। मान का अर्थ होता है किसी चीज का नाप लेना। जब तक अनुभव नहीं है तब तक ज्ञान नहीं होता, लेकिन कई दूसरे माध्यमों से भी आ सकता है। दूसरों का अनुभव भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपको उसकी परीक्षा करनी होती है, और परीक्षा कैसे करेंगे? आपके अपने अनुभव से। तो मैं जो भी यहाँ कह रहा हूँ उसकी आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, उसको जाँचना पड़ेगा। मेरी बातों को ज्ञान न माने। जब तक वो आपका अनुभव नहीं होता तब तक वो ज्ञान नहीं होगा, आपको किसी और की कही हुई बात होगी। पुस्तकों में जो लिखा है काफी उससे मदद मिलती है, लेकिन यदि आपने उसको जांचा नहीं है, तोला नहीं है अपने अनुभव के आधार पर, तो खतरा होता है कि आपको अज्ञान मिल रहा है वहां से। सही अनुमान लगाया है तो ठीक है, ज्ञान आपको मिल जाएगा। सही नहीं है, वो आपके पिछले अनुभव के आधार पर नहीं है वो अनुमान, तो आपको अज्ञान ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से चार हैं, लेकिन चारों का जो मूल है, चारों का जो सार है, वो अनुभव ही है। कहीं ना कहीं आपको अनुभव लाना ही पड़ेगा बीच में, नहीं तो उसको ज्ञान नहीं कह सकते। सारांश यही है कि अनुभव और ज्ञान एक ही चीज़ है। अनुभव से ही ज्ञान आता है, उसके माध्यम विभिन्न हो सकते हैं। आखिर में आपको अनुभव पर ही विश्वास करना है और किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है। ये पुस्तक है, गुरु, और ये जो है एक तरह का शॉर्टकट है, लेकिन पक्का ज्ञान तब तक नहीं आएगा जब तक कि अनुभव नहीं होगा। आपके मन में हमेशा एक शक रहेगा कि ये सही है या नहीं है। लिखा तो है, यहाँ गुरु ने भी कहा है, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जब तक आपको अनुभव नहीं होगा उसे ज्ञान नहीं होगा। खासतौर से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो ज़रूरी है। अगर आपके सामने कोई लाता है कि हाँ ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये इस किताब में लिखा है, तो आपको आँख बंद करके उसको नहीं मानना है। वो मान्यता बन जाएगा, वो अवधारणा बन जाएगा, या आपको तर्कसंगत भी लगता है तो वो सिद्धांत बन जाएगा, वो सिद्धांतिक या परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, वो सीधा ज्ञान नहीं है। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि यदि ये सच है तो क्यों है, बाकी लोगों का अनुभव हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हुआ है, ये आपको लगता रहेगा। खास तौर से ये बात आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्व की है। कोई भी बता आपको कि मेरे सामने प्रमाण है कि ये बात सही है, ये मेरा ज्ञान है, तो आपको जांचना है कि वो 6 में से कौन सा प्रमाण है। आपको पूछना चाहिए कि कैसे तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा ये ज्ञान हुआ है, ये बात सच है, किस प्रमाण के आधार पर सच है। अगर ये 6 में से कोई भी एक नहीं मिलता है आपको, तो आपको उसको मानना नहीं है, वहाँ से निकल जाना है, उससे बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो समय नष्ट करने के बराबर है। आपको बस इतना पता चल जाएगा कि हाँ ये ज्ञान नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं, अगर मैंने इस पर कुछ कर्म किया इसके आधार पे तो समस्या ही आने वाली है, कुछ और नहीं मिलने वाला मुझे। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि ज्ञान के साधन क्या है और क्यों है। इस पे काफ़ी वाद विवाद चलता रहता है, जो सांख्य और मीमांसा और न्याय और अद्वैत और बौद्ध और जैन, इन लोगों में जो है, दार्शनिकों में चलता रहता है इनका वाद विवाद। अगर आप विज्ञान में देखेंगे, जो पश्चिमी विज्ञान है, उसमें पहला और दूसरा जो अद्वैत का जो प्रमाण, दो तरह के प्रमाण जो अद्वैत में माने गए हैं, वो पश्चिमी विज्ञान में भी वही है। पहला जो ज्ञान का जो साधन है वो है प्रयोग, यानी कि अनुभव। जब तक प्रयोग नहीं होता है तब तक कुछ भी ज्ञान नहीं आता है। और दूसरा है तर्क, यानी कि अनुमान लगाना, तार्किक रूप से उसका मॉडल बना के उसका विश्लेषण करना। विज्ञान में भी दो ही तरीके के साधन उपयोग में लाए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि गुरु और पुस्तक भी मानी गई है विज्ञान में, लेकिन अतिरिक्त साधन है। जब तक अनुभव नहीं होता विज्ञान में, जब तक प्रयोग नहीं होता, तब तक उसको सिद्धांत समझा जाता है, उसको थ्योरी समझा जाता है, ज्ञान नहीं समझा जाता। विज्ञान और वेदांत एक ही चीज़ है, दोनों ही ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। उनमें आपको ये चीज़ें सहायता दे सकती हैं, किताबें या गुरु या आपका तर्क या अनुमान, ये सहायक हो सकता है, लेकिन आखिर में जो है अनुभव से ही ज्ञान मिलेगा।
आप सुन रहे थे बोधिवार्ता तरुण प्रधान के साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में। नमस्कार।